हेलो एंड वेलकम टू तब से अब तक। मैं हूं आपकी होस्ट शिफाली आनंद, और हर बार की तरह फिर से मैं इस बार भी आपके साथ जाना चाहती हूं एक स्टोरी की जर्नी पर, एक नहीं दो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑन आवर जर्नी, मैं आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, ये दिवाली आपके लिए हेल्थ का और वेल्थ का दोनों का गिफ्ट लेकर के आए। और ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि आज की जो स्टोरी है जिसमें हम आंसर्स ढूंढेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस के, ये स्टोरी भी दिवाली से रिलेटेड है। ये वो स्टोरी है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करती है। ये है नरक चतुर्दशी से रिलेटेड स्टोरी। नरक चतुर्दशी यानी कि सेकेंड डे ऑफ दिवाली। साउथ में दिवाली की सेलिब्रेशन स्टार्ट ही नरक चतुर्दशी से होती हैं। ये स्टोरी विष्णु पुराण से है, और जो दो क्वेश्चंस हम इसके थ्रू आंसर करने की कोशिश करेंगे वो क्वेश्चंस हैं, क्या ज़रूरत से ज़्यादा घमंड, ऐसा घमंड जो हमें हमारी पोजिशन की वजह से है, उस घमंड के चलते किसी का डिसरिस्पेक्ट, किसी के इंसल्ट करना ठीक है, और अगर ऐसा कभी हम करते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक माँ का अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना, इतना प्यार करना कि वो उसकी ज़िंदगी को एक तरह से स्टीयर करने की, एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करना शुरू कर दे, क्या वो ठीक है? लेट अस फाइंड अवर आंसर्स थ्रू दिस स्टोरी ऑफ नरकासुर। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये खाली नरकासुर की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी उसके बियॉन्ड जाती है। ये स्टोरी कृष्ण और सत्यभामा की स्टोरी है, ये स्टोरी इंद्र और शची की स्टोरी है। नरकासुर तो बस एक तरह से एक एंकर पॉइंट है जो इसे दिवाली के टाइम में एक तरह से बांध देता है। इस स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब विष्णु अपनी नींद से उठते हैं। विष्णु की नींद हज़ार साल चलती है। जब वो एक बार सोते हैं तो हज़ार साल के लिए सोते हैं, और जब वो हज़ार साल बाद अपनी नींद पूरी करके उठते हैं तो बहुत अच्छे मूड में होते हैं। उनसे जो भी जा करके कुछ मांगता है उसे वो मिल जाता है। तो विष्णु जब नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि भूदेवी यानी कि पृथ्वी सामने खड़ी हैं। पृथ्वी ने जैसे ही देखा कि वो उठे हैं, उन्होंने तुरंत अपना वर मांग लिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब आप वराह अवतार में प्रकट हुए थे तब आपकी और मेरी एक संतान हुई थी, उस संतान के लिए मैं आपसे वर मांगने आई हूँ। तो विष्णु ने कहा ठीक है, बोलो क्या। तो पृथ्वी ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कोई मार ना सके, कोई उसे हरा ना सके, वो ऑल पावरफुल हो, उसके पास आपका वैष्णव अस्त्र हो। और विष्णु ने आई एम श्योर सोचा होगा कि ये एक वर तो नहीं है, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा वर मांग रही है, बट मूड अच्छा था तो उन्होंने कहा ओके फाइन। और तो भूदेवी ने कहा कि और एक लास्ट चीज़ कि अनटिल अनलेस मैं ऐसा चाहूँ उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सके। तो विष्णु जी ने कंसिडर किया उस राइडर को और उन्होंने कहा तथास्तु। यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा डाइवर्जन मैं लेना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब नींद आती है आपको तो आपका मूड अच्छा रहता है, आपके आसपास जो होते हैं वो अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आप या ऑफकोर्स मैं बिना नींद के चिड़चिड़े नहीं हो रखे होते हैं। तो वी आर इन अ बेटर मूड, विच मीन्स द वर्ल्ड लुक्स बेटर टू अस, एंड वेन द वर्ल्ड लुक्स बेटर हम खुद बेटर हो जाते हैं। सो इट्स अ गुड आइडिया टू स्लीप मोर। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, फिगर आउट क्यों, क्योंकि सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकते हम। तो एनीवे, ये बात थी जो आई गई हो गई, ख़त्म हो गई। विष्णु कितनों को वर देते होंगे, उन्हें कहाँ याद रहता, प्रॉबेबली याद भी रहता तो उनके टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस में ये नहीं था। खैर, कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण विष्णु के अवतार थे। फिर वो बड़े हुए, बड़े होकर के उन्होंने कंस को मारा, और फिर उन्होंने द्वारका में रहना शुरू किया। जब कृष्ण द्वारका में रहते थे तो उस समय उनके एक ट्रेजरर थे और उनकी बेटी थी सत्यभामा, जिससे कृष्ण की शादी हुई। कृष्ण की वो आठवीं वाइफ थी। सत्यभामा कृष्ण के बहुत क्लोज थी। मतलब उनकी फेवरेट वाइफ थी, एक तरह से उनकी फ्रेंड थी, और वो सत्यभामा को यूजुअली अपने साथ हर जगह लेके भी जाते थे. बट सत्यभामा वॉज डेफिनेटली ह्यूमन. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज समथिंग दैट यू लर्न इन अ लिटिल व्हाइल. कृष्ण ऑफ कोर्स डिवाइन थे. एनीवे, तो एक दिन कृष्ण बैठे हुए थे सत्यभामा के साथ, अचानक इंद्र वहाँ पहुँच गए ऐरावत के ऊपर बैठ के, और वो बड़े घबराए से, बड़े परेशान से लग रहे थे. और उन्होंने कहा, कृष्ण मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ये एक असुर है जिसने बड़ा आतंक मचा रखा है, जिसने सबको बड़ा परेशान कर रखा है. ये एक जगह है प्रागज्योतिषपुर, वहाँ का राजा है, और इसको आपका वर प्राप्त है, और उस वर की वजह से कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता. वो इतना बुरा इंसान है कि उसने हजारों लड़कियों को, देवों की, सिद्धों की, मनुष्यों की, सबकी बेटियों को अपने अंतःपुर में कैद कर रखा है. और तो और उसने वरुण का छत्र भी ले लिया है, और मेरी माँ अदिति के कुंडल भी ले गया है, और हम कोशिश करके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, और आपने उसे वर दे रखा है, तो अब आप ही कुछ कीजिए. कृष्ण ने कहा, ठीक है मैं करता हूँ. तो कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, और गरुड़ पे बैठ के सत्यभामा और कृष्ण पहुँचे प्रागज्योतिषपुर. प्रागज्योतिषपुर कैपिटल था कामरूप का, जहाँ पर नरकासुर राज करता था, और पूरे राज के चारों ओर एक फेंस बना दी थी मुर ने. मुर जो उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट कलीग था, उसका इम्पोर्टेंट फ्रेंड था, उसने अपनी माया को यूज़ करके धारदार फेंस बना दी थी, जिससे इम्पॉसिबल था अंदर जाना. कृष्ण ने उस फेंस को छिन्न भिन्न कर डाला, और फिर अंदर पहुँचे सत्यभामा के साथ. बड़ी लड़ाई हुई, बहुत असुर आए, बहुत सारी सेना आई, सब खत्म हो गए. कृष्ण के आगे कोई नहीं टिक सका. फिर अल्टीमेटली नरकासुर आया. और इस पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सत्यभामा भू देवी की अवतार थी. तो जब विष्णु ने वर दिया था, उस समय आपको याद होगा कि पृथ्वी ने कहा था कि जब तक मैं ना चाहूँ. अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब लड़ाई हो रही थी, क्योंकि नरकासुर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो एक मोमेंट के लिए ऐसा हुआ कि नरकासुर का छोड़ा हुआ शस्त्र जा करके विष्णु को लगा, और विष्णु को हल्की सी मूर्छा सी आई. जैसे ही ये हुआ, सत्यभामा को बहुत गुस्सा आया. सत्यभामा ने बाणों की बौछार कर दी, जिससे नरकासुर एकदम से रुक गया. तब तक कृष्ण नॉर्मल हो गए, और उन्होंने अपना चक्र भेज करके नरकासुर के धड़ के दो टुकड़े कर दिए. नरकासुर खत्म हो गया. नरकासुर ने 16,100 लड़कियों को कैद किया हुआ था. कृष्ण ने उनको छुड़वाया. 6,000 उसने हाथी कैद किए हुए थे. ये स्पेशल हाथी थे, सेलेस्टियल हाथी थे, जिनके 4 दांत थे, उन्हें कैद किया हुआ था, उन्हें छुड़वाया. और 21,00,000 घोड़ों को छुड़वाया, और भी पता नहीं कितने लोगों को, जिन्हें नरकासुर ने कैद किया हुआ था, उन्हें छुड़वाया. तो जब नरकासुर मरा, तो एक तरह से अंधेरा सा छटा, और लोग बड़े खुश हो गए, दुनिया बड़ी खुश हो गई. और इसी खुशी में नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नरकासुर का वध हुआ था. तो एक तरह से स्वर्ग में, पाताल लोक में और भूलोक में, सब जगह लोग बड़े खुश हो गए. इट्स वेरी मच लाइक जैसे कोविड खत्म हुआ है, तो हम लोग बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से आतंक मचाया हुआ था कोविड ने. बिल्कुल उसी तरह से वही फीलिंग लोगों के दिल में थी, और लोगों ने खूब दिए जलाए, क्योंकि अंधेरा हट गया. तो एक तरह से ये चीज़ सिंबॉलिक है नरकासुर के जाने की. खैर, कृष्ण और सत्यभामा वहाँ से निकले गरुड़ पर, और कृष्ण ने सोचा कि अब क्योंकि माता अदिति के कुंडल भी हमने यहाँ से ले लिए हैं, और वरुण का छत्र भी ले लिया है, तो अब इट इज़ अ गुड टाइम टू गो टू स्वर्ग, एंड वहाँ जा करके इनको रिटर्न करके फिर वापस चलते हैं द्वारका. वहाँ पर जब कृष्ण पहुँचे, तो उनको बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान से अंदर लाया गया. सारे देवता वहाँ पर वेट कर रहे थे उनका, और सारे देवताओं के और इंद्र के साथ इंद्र की वाइफ शची भी थी. तो जब वो लेके अंदर आए, तो जो सबके रिस्पेक्ट में शची ने जब सबका तिलक किया, तो उनके ऊपर पारिजात पुष्प डाले. ये वो पेड़ था जो समुद्र मंथन में निकला था, अगर आपको याद होगा. तो ये खास पेड़ था, और इंद्र ने ये पेड़ शची को उसके गार्डन में गिफ्ट करके दिया था. तो जब शची सबका अभिषेक उस फूल से कर रही थी तो उसने सत्यभामा का नहीं किया, क्योंकि उसने ये सोचा कि सत्यभामा मनुष्य है, ये डिवाइन नहीं है, तो इसका नहीं करना चाहिए। ये बात सत्यभामा के दिल में घर कर गई। उसे बड़ा इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी गेस्ट थी, एंड आफ्टर ऑल इफ यू रिमेंबर राइट, वो भी रिस्पॉन्सिबल थी नरकासुर की डेथ के लिए, शी हैड फॉट, तो उसे बड़ा इंसल्टेड फील हुआ। खैर उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लोग अंदर गए स्वर्ग में, वहाँ पर जा कर के वरुण को छत्र दिया और फिर माता अदिति के पास ये दोनों पहुँचे कुंडल वापस करने। तो माता अदिति ने उनका सत्कार किया, उन्हें बिठाया, और फिर जब उन्होंने सत्यभामा को देखा तो उन्हें बड़ी अच्छी लगी सत्यभामा, और उन्होंने बड़े प्यार से सत्यभामा के सर पे हाथ रख के कहा, सत्यभामा तुम मेरा कुंडल वापस लेकर के आई हो, मैं तुम्हें हमेशा फॉरएवर यंग रहने का वर देती हूँ, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा जवान बनी रहोगी। वहाँ से माँ अदिति के पैरों को छू करके ये लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद सत्यभामा ने कहा, सारा काम खत्म हो गया है तो चलिए हम थोड़ी देर गार्डन घूमते हैं, ये स्वर्ग का गार्डन मेरे को देखने को मिल रहा है, सो लेट अस गो एंड सी कि कितना सुंदर गार्डन है। तो जब गार्डन में ये लोग निकले तो सत्यभामा सारे टाइम ढूंढ रही थी पारिजात वृक्ष। जब उनकी नज़र पड़ी पारिजात वृक्ष पर तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, और वहाँ जा करके बड़ा अच्छा फील हुआ उन्हें। बट एट द सेम टाइम वो भूली नहीं थी कि शची ने क्या किया था, तो उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण एक चीज़ मुझे आप दे दो, आप सबको वर देते रहते हो, मुझे भी दे दो, मेरी भी एक हेल्प कर दो। तो कृष्ण ने कहा, क्या? सत्यभामा ने कहा, मुझे ये पारिजात वृक्ष चाहिए। कृष्ण ने कहा, लो इसमें क्या बात है। उन्होंने वृक्ष उखाड़ा और गरुड़ की पीठ पे रख लिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, जितने लोग वहाँ पर उद्यान में थे वो परेशान हो गए, जो माली थे जो रक्षक थे वो सारे आए भागे भागे। उन्होंने कहा, भगवान ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ ये तो महारानी शची का वृक्ष है और बिना उनकी परमिशन के आप नहीं ले जा सकते। तो सत्यभामा ने उनसे कहा कि जाके कह दो शची से कि सत्यभामा ले गई है वृक्ष, क्योंकि ये वृक्ष खाली उनका नहीं है, ये समुद्र मंथन में निकला है। जब समुद्र मंथन में निकली हुई सारी चीज़ें सबकी हैं, जब लक्ष्मी पर सबका अधिकार है, मदिरा पे सबका अधिकार है, जब अमृत पे सबका अधिकार था, जब हर एक चीज़ पर सबका अधिकार था, तो वृक्ष खाली उनका कैसे हो गया? ये वृक्ष हम लेके जा रहे हैं। और उनको ये भी कह देना, अगर वाकई इंद्र उनके वश में है तो भेजे इंद्र को, वो आ करके लेके जाए। तो जो माली थे बेचारे वो क्या करते, उन्होंने जा करके ये सारी बात शची को कह दी। शची ने फिर अपना इन्फ्लुएंस दिखाया इंद्र पर, और जैसे कि होता ही है कि ज़्यादातर वाइफ का कहा हुआ टालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो बहुत स्मार्टली बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करे। तो शची ने फिर अपने तरीके से इंद्र से बात की, वी डोंट नो क्या बात की। विष्णु पुराण में जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी ये डिटेल नहीं थी कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा, लेकिन इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र ने देवताओं की सेना तैयार की, वो पहुंच गए कृष्ण से लड़ने। कृष्ण तब तक निकल पड़े थे द्वारका के लिए, आधे रास्ते में इंद्र ने रोक लिया और उनकी घमासान लड़ाई हुई। कृष्ण और सत्यभामा ने भी लड़ाई की, और होते होते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जो अंतिम वेपन दोनों का था दोनों ने वो निकाल लिया। इंद्र ने अपना वज्र निकाला और कृष्ण ने अपना चक्र निकाला। इंद्र ने तो अपना वज्र चला दिया और कृष्ण ने उस वज्र को अपने हाथ में पकड़ लिया, पर अपना चक्र चलाने से पहले वो थोड़े स्थिर हुए, शांत हुए, और उन्होंने कहा, इंद्र ज़रा रुको। सत्यभामा ने कहा, इंद्र आप वापस चले जाइए, पारिजात वृक्ष के लिए हम लोग लड़े ये अच्छा नहीं है, आपको क्या लगता है मुझे पारिजात वृक्ष की कामना है, मुझे ये चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, शची ने मेरी इंसल्ट की। उन्होंने मुझे इंसान जान करके, मनुष्य जान करके, उन्होंने मेरा अभिषेक नहीं किया। मैं सिर्फ उन्हें ये बताना चाहती थी कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, और जब भी लड़ाई होगी तो मेरे पति उनके पति से आगे होंगे। इंद्र ऑफ कोर्स वॉज द किंग, तो ही वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमैट। ऑफ कोर्स ही अंडरस्टूड कि सत्यभामा क्या कह रही हैं। नहीं तो आई वुड से ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि इंद्र भी इस चीज़ को इंसल्ट ले लेंगी, क्या मतलब है, मैं क्यों पीछे हूँ। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, एंड पॉसिबली उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि हर बार जब कोई प्रॉब्लम आती है जाना तो विष्णु के पास ही पड़ता है। तो एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय की। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो फिर सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्या भूदेवी ने सही किया जब उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये वर मांगा कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, कि कोई उसके सामने टिक ना सके, कि वैष्णव वस्त्र उसे मिल जाए? What was she doing? What was she thinking? Probably she was thinking कि वो बहुत अच्छा कर रही हैं अपने बेटे के लिए। जैसे कई पेरेंट्स सोचते हैं कि जब वो शुरू से अपने बच्चे को एक तरीके से ढालना शुरू कर देते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं बच्चे के लिए। आई डोंट नो, आई कांट से। मैं ऐसा सोचती हूँ कि माँ बाप का हक भी होता है और माँ बाप की एक ड्यूटी भी होती है। माँ बाप की ड्यूटी ये होती है कि वो बच्चे को उसके अपने गुणों के हिसाब से पनपने दें। माँ बाप का हक ये होता है कि वो अपने बच्चे को जो साधन देना चाहें वो दें। बट टू चेंज द चाइल्ड्स लाइफ, टू चेंज द रूट, अनटिल एंड अनलेस वो गलत रास्ते पे जा रहा है, ज़बरदस्ती उसे एक तरफ झुकाना मैं सोचती हूँ गलत है। भूदेवी अगर ये ना करती, अगर वो अपने बेटे को पनपने देती जैसे वो पनप रहा था, जेनेटिकली उनके बेटे में विष्णु के भी गुण थे और उनके भी गुण थे, शायद वो ठीक रास्ते पे निकलता। लेकिन जिस बच्चे को शुरू से ये पता हो कि वो एब्सोल्यूट पावर के साथ पैदा हुआ है, उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, तो वो सही रास्ते पे चलेगा क्यों? क्योंकि जब टीनेज होती है तो सही गलत समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। उस समय आपके हार्मोन्स आपको रूल करते हैं, और बहुत मज़ा आता है उन चीज़ों को करने में जो गलत होती हैं, जिनमें एग्रेशन होता है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी होती है। जब आपको ये पता हो आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? वेल, अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। कई मंत्रियों के बेटे अपने को ऑल पावरफुल समझते हैं, वो सोचते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कई एक्टर्स के लड़के, जस्ट बिकॉज उनके फादर या उनकी मदर एक ऊंची पोजीशन में है, ऊंचे लोगों से हिलना मिलना है उनका, तो वो ये सोचते हैं कि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम कोई भी गलत काम करें। क्यों? क्योंकि वो बड़े ही उस माहौल में हुए हैं, बड़े ही वो ये सोच के समझ के हुए हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आई थिंक देर इज़ अ लेसन टू बी लर्न देयर। मैं सोचती हूँ कि भूदेवी को वो नहीं करना चाहिए था, देट वॉज अ मिस्टेक। वो विष्णु के पास उसी समय पहुँची जब विष्णु नींद से उठे थे। जब आप नींद से उठते हो तो ऑफ कोर्स आप उस समय चीज़ों को एनालिटिकली नहीं देखते, उस समय वाकई आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, यू आर रिलैक्स्ड। यस ऑफ कोर्स द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज घमंड। शची को घमंड था अपनी पोजीशन का, वो सोचती थी कि देव यानी कि देवता मनुष्यों से कहीं ऊपर हैं। वो इस हद तक ये सोचती थी कि सत्यभामा जो कृष्ण के साथ नरकासुर के पास जाके उससे लड़ के अदिति के कुंडल छुड़ा के लाई थी, वो कहीं ना कहीं उससे कम है। वो अपनी पोजीशन की वजह से अपने को ऊंचा समझ रही थी, सत्यभामा अपने कर्म की वजह से अपने को ऊंचा समझती थी। शची ने जो किया वो गलत था, वो डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा एक आग जलाता है अंदर, वो धक धक करके अंदर जलती है, दिलों के अंदर जलती है, और फिर वो किसी दिन सबको जला देती है। सत्यभामा के साथ यही हुआ। सत्यभामा के अंदर एक आग जल पड़ी, और वो आग ऐसी आग थी कि उसने मजबूर किया। उस आग के चलते जब उसे मौका लगा पारिजात को उखाड़ के अपने साथ ले जाने का, तो वो उसने ले लिया। जब उसे मौका लगा इंद्र की इंसल्ट करने का, जो कि उसने की एक्चुअली, आई वुड से हाँ इंद्र की इंसल्ट हुई, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में इंद्र कम्स अक्रॉस एज अ पर्सन हु डजंट क्वेश्चन शची और शची के एक्शंस। जब उसने ये किया तो वो इसलिए किया क्योंकि उसके दिल में आग लगी थी, रिवेंज, ये भावना होती है बदले की भावना। जिसने मुझे नीचा दिखाया है उसको मैं नीचा दिखाऊंगी, ये भावना मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है। जब ये भावना अंदर आती है तो लोग बहुत बदल जाते हैं, और शुरुआत इसकी होती है एक गलती से, और वो गलती इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने को दूसरे से ऊपर समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्लेग, डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरी चीज़ है, और मैं आपके सामने खड़े होकर के ये कह रही हूँ, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किसी ना किसी तरह का मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। वी ऑल डिस्क्रिमिनेट ऑल द टाइम। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन हम सोचते हैं कि कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये अक्सर हम रियलाइज़ नहीं करते कि जो सुनने वाला है उसके लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने तो कहने कहने में कह दी, आपने तो ये डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मल समझ के कर दिया, लेकिन उसके दिल में ये बात रह गई है। एज एन एपिलॉग मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो कृष्ण ने इंद्र से कहा बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि मैं तो इंसान हूँ और मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, मैं ये सब कुछ चाहता नहीं था, पारिजात वृक्ष को अब आप वापस ले जाएं और नंदन वन में लगा दें। तो इस पर इंद्र ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है आप डिवाइन हैं, आप तो विष्णु के अवतार हैं, और अब मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं शची से बात करूँगा इस बारे में, और ये पारिजात वृक्ष अब आप अपने साथ लेकर के जाइए और अपने यहाँ लगाइए, और ये तब वापस आ जाएगा जब आप वापस आएंगे। और ये कह करके दोनों ने बड़े प्यार से एक दूसरे से विदा ली, और इस तरह से पारिजात वृक्ष तक पहुँच गया द्वारका। और जब तक वो वृक्ष वहाँ पर था तब तक लोगों को बहुत अच्छा लगता था, बड़ा खुश फील करते थे। जब लोग उस वृक्ष के पास जाते थे तो उनको अपना पुराना जन्म याद आ जाता था, वो अपने चारों ओर हेलो देखते थे, एक रोशनी सी देखते थे। सो वेल, द फाइनल बिट अबाउट दिस स्टोरी इज़ कि अगर ऐसा हो भी जाए, अगर लड़ाई हो भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर से गले मिल लो, फिर से हाथ मिला लो, फिर से आराम से बात कर लो, खुशी से बात कर लो। जब चीज़ें क्लियर हो जाएं तो उसके बाद दिल में चीज़ें मत रखो। इनफैक्ट दोनों में से एक को तो स्टार्ट करना ही होता है। इस केस में कृष्ण ने स्टार्ट किया, उन्होंने चक्र नहीं चलाया, वो वहाँ रुक गए। हाँ, मैं समझती हूँ कि कई बार चीज़ें रिपेयर नहीं हो सकती, कई बार एक तरफ से तो रिपेयर करने की कोशिश होती रहती है और दूसरी तरफ से उसका रिस्पांस नहीं आता, इक्विवेलेंट यानी कि बराबरी का रिस्पांस नहीं आता। और फिर एक तरफ जो इंसान कोशिश कर रहा हो, बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो, बार बार प्यार से बातें कर रहा हो, वो भी हार जाता है, ये भी मैं समझती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी से भी कोई आपके पास में लड़ाई हुई हो तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस दिवाली एक बार कोशिश करिए उससे बात करने की, सब कुछ भूल भाल के एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। अगर कोई दोस्त गुम हो गया हो पास्ट की धुंध में, सालों से मिले ना हो उससे, तो एक बार फ़ोन उठाइए, कोशिश कीजिए बात करने की। जब कृष्ण और इंद्र फिर से गले मिल सकते हैं, इतनी लड़ाई करने के बाद गले मिल सकते हैं, वाइफ्स के आपस की इस लैक ऑफ एमिकेबिलिटी, उनकी वाइफ्स में दोस्ती नहीं थी, फिर भी वो साथ हो सकते हैं, फिर भी वो गले मिल सकते हैं, तो फिर आप भी मिल सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसको हमें एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, बाकी फिर लीव इट टू फेट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब मैं चलती हूँ। आई विश अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर लव्ड वंस। हाँ, एक छोटी सी बात रह गई थी। तब से अब तक शो को अब आप सुन सकते हैं गाना Amazon Music और जियो सावन पर भी। तो अगर आपकी फेवरेट ऐप इनमें से कोई है तो प्लीज़ लुक फॉर तब से अब तक शो ऑन दीज ऐप्स। बाय, थैंक यू।